सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलं सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं पञ्च परमेष्ठी भगवान् की अहिंसा परमो धर्म की आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर मुनि महाराज की
बोलिए परम पूज नियम सागर जी महाराज की जय मुनि संघ की जय।
ढाई बजे से प्रवचन का कार्यक्रम प्रारंभ हुआ, उससे पूर्व नाटक को भी आप लोगों ने देखा सुना। लगातार इस तरह से बैठना भी एक अतिशय कारी घटना ही माना जाएगा। इतनी बैठने की क्षमता आप लोगों के पास है, कमर में बहुत शक्ति है। थोड़ा बहुत हम सुना सकते हैं, ज़्यादा नहीं। सुबह भी सुना है और लगातार सुनने में आप ज़्यादा ही शरीर के साथ प्रयास करेंगे तो शरीर भी जवाब दे सकता है, ऊब सकता है। उत्साह के साथ जब प्रवचन हम सुनते हैं तो उसका अर्थ ग्रहण चिंतन मनन विशुद्धि के साथ होता है। विशुद्धि बहुत आवश्यक होती है उपदेश सुनते समय। अभी हम उस घटना को आप लोगों के सामने रखना चाहेंगे जब 170 आर्यखंडों में 160 तो विदेह क्षेत्र होते हैं और 5 भरत क्षेत्र होते हैं तथा 5 ऐरावत क्षेत्र होते हैं। हम जहाँ बैठे हैं ये जम्बूद्वीप का एक भरत क्षेत्र है। जम्बूद्वीप में एक भरत क्षेत्र है तो इसके अगले द्वीप में इससे दुगने अर्थात 2 भरत क्षेत्र अवश्य होते हैं। ऐरावत क्षेत्र ये भी दुगने दुगने रूप से बढ़ते जाएंगे। जम्बूद्वीप में एक भरत क्षेत्र, धातकी खंड में 2 और पुष्करार्ध में 2, इस प्रकार से 5 भरत क्षेत्र माने गए हैं। इसी तरह से एक ऐरावत क्षेत्र जम्बूद्वीप में, 2 ऐरावत क्षेत्र धातकी खंड में और 2 ऐरावत क्षेत्र पुष्करार्ध में पाए जाते हैं। ये 10 हो गए और विदेह क्षेत्र माने गए हैं 160। मनुष्य लोक में अधिक से अधिक संख्या में एक साथ समोच्चरण 170 लग सकते हैं। प्रत्यक्ष तीर्थंकर भगवान अलग अलग क्षेत्रों में अधिक से अधिक संख्या में रहे तो 170 तीर्थंकर रह सकते हैं। ऐसा सुनते हैं कि अजितनाथ भगवान के काल में 170 तीर्थंकर इस ढाई द्वीप में विद्यमान थे। अभी इस समय यहाँ तो पंचम काल चल रहा है तो 5 भरत क्षेत्रों में भी पंचम काल ही चल रहा है। ऐरावत क्षेत्र भी भरत क्षेत्रवत परिवर्तन रखता है तो भरत क्षेत्र और ऐरावत क्षेत्र में भी इस समय 10 क्षेत्रों में पंचम काल का परिवर्तन चल रहा है। सेम व्यवस्था होती है, सेम आयु, सेम उत्सेद, शरीर की ऊंचाई समान रूप से होती है 10 क्षेत्रों में, किंतु जो 160 विदेह क्षेत्र जिसको हम बता रहे थे, उन 160 विदेह क्षेत्रों में इस समय उनकी ऊंचाई इस समय क्या अनादिकाल से निरंतर रूप से वहाँ पर मनुष्यों की ऊंचाई न घटती है न बढ़ती है। 500 धनुष, एक धनुष का होता है 5 फुट, तो 500 धनुष के मनुष्य वहाँ पाए जाते हैं, यानी वहाँ जाएंगे अभी अपन तो 500 धनुष के तीर्थंकर मिलेंगे, और 500 धनुष का उनकी काया है, शरीर है, तो समोसरण कितना बड़ा लगा होगा ये आप परिकल्पना कर सकते हैं। बहुत विशाल क्षेत्र माने जाते हैं विदेह क्षेत्र, जहाँ पर अभी भी यहाँ पंचम काल चल रहा है तो वहाँ चतुर्थ काल चल रहा है। पूरे 2.5 द्वीप में 20 तीर्थंकरों का समोसरण अभी विद्यमान है। महाराज हम वहाँ पर जा सकते हैं क्या? कैसे जाएंगे? बेकरी सामान खा करके विदेह क्षेत्र जाएंगे और तीर्थंकरों का दर्शन पूजन करने का सौभाग्य उठाएंगे? नहीं, ये कभी संभव नहीं है। अपने जीवन को सबसे पहले पाप से मुक्त करना पड़ेगा, मुक्त रखना पड़ेगा। पापाचरण से हम किस गति में जाएंगे परभव में, ये तो हमारे सामने दिखता है, हमारा भविष्य हमें ही दिखता है। हम अच्छे हैं या बुरे हैं इस प्रकार यदि हम अपने मन से विचार करेंगे तो पता चलता है हम अच्छे हैं। अच्छे हैं तो स्वर्ग दिखता है निश्चित रूप से, और बुरे हैं तो हमारे लिए त्रयंची गति और नरक गति निश्चित रूप से दिखती है। मैं इतना बुरा हूँ, इतना पाप कर रहा हूँ तो कहाँ जाऊँगा, ये कोई सोचने की जरूरत नहीं है। 2 गति हमारे लिए शेष हैं। विदेह क्षेत्र कौन कौन जाएंगे यदि ये सभा में पूछा जाए, सभी लोग हाथ उठाएंगे। ऐसा नहीं कि ये विमान नगर है और यहाँ पर विमान उतरते हैं और आप लोगों को बिठा करके ले जाया जा सकता है, इतना आसान नहीं है। यहाँ भरत क्षेत्र से विदेह क्षेत्र कितनी दूरी पर हैं यदि ये प्रश्न पूछा जाए तो कहाँ जाएगा? 1,00,000 योजन प्रमाण यह जम्बूद्वीप यदि है तो उसके बीचों बीच एक सुमेरु पर्वत है जहाँ पर 16 अकृत्रिम चैत्यालय हैं जिनका वंदन पूजन दर्शन इत्यादि करने के लिए देवगण भी आते हैं, और बड़े बड़े चारण रिद्धि मुनि महाराज भी सुमेरु पर्वत के अकृत्रिम चैत्यालयों का दर्शन करने के लिए जाते हैं। एक चोर का नाम शास्त्रों में प्रसिद्ध है जिनको हम अंजन चोर कहते हैं। अंजन चोर भरत क्षेत्र से सुमेरु पर्वत पर चोर अवस्था में ही चला गया था, और नमोकार मंत्र की महिमा से। अभी अभी नाटक में देखा, नमोकार मंत्र पढ़ते ही और उसकी भक्ति करते ही प्यासी को पानी मिलने लगा था, और कहाँ से प्रस्फुटित होकर के धरती से आया क्या मालूम, और वह बच्चा अपनी प्यास को बुझाने का प्रयास कर रहा था और पानी को पी रहा था, तो ऐसा लगा कि नमोकार मंत्र में वस्तुतः इसी प्रकार की शक्ति होती है। ऐसा सबको समझ में आता है कि नहीं? कष्ट के काल में आप नमोकार मंत्र का यदि जाप करेंगे, नमोकार मंत्र का यदि स्मरण भी करेंगे, एक बार श्रद्धा के साथ उसका चिंतन भी करेंगे, तो आपके कष्ट स्वतः दूर होना प्रारंभ हो जाता है। इतनी बड़ी शक्ति उस अनादि निधन मंगलमय नमोकार मंत्र में विद्यमान है, उसका हमने कभी श्रद्धा के साथ पढ़ा नहीं। अंजन चोर इसी मंत्र के प्रभाव से बातों बातों में चोर होकर के भी पाप का कार्य करता हुआ भी जब नमोकार मंत्र के ऊपर इतनी श्रद्धा जगाई तो उनको आकाश गामिनी विद्या प्राप्त हो गई और उस विद्या के बल पर वे सुमेरु पर्वत जा कर के पहुँचे, जिनके माध्यम से इनको नमोकार मंत्र परंपरा से उपलब्ध हो गया था। उस सेठ जी के पास पहुँचे, उस सेठ जी का नाम जानते हैं आप क्या है? हाँ, जिनेंद्र भक्त। हाँ, जिनेंद्र भक्त सेठ है ना, जिनदत्त सेठ, जिनदत्त सेठ। हाँ, जिनदत्त सेठ के पास पहुंच गए। जिनदत्त सेठ उसको जानता था और जिनदत्त सेठ के नगर में वह अंजन चोर प्रसिद्ध ही था, क्योंकि वो चोरी के अलावा कुछ दूसरा काम नहीं करता था। जिनदत्त उस चोर को सुमेरु पर्वत पर देख करके आश्चर्य करने लगा, ये चोर यहाँ कैसे आ गया, ताजुब हो गया, ये एक चोर यहाँ सुमेरु पर्वत पर, यहाँ पर तो बड़े बड़े चारण रिद्धि मुनि महाराज तपस्वी लोग आते हैं और ऐसे वैसे लोग तो आ नहीं सकते जो ईमानदारी से त्याग तपस्या संयम धारण करने वाले और सिद्धि पाने वाले यहाँ पर आ सकते हैं, और ये अंजन चोर यहाँ कैसे आ गया पता नहीं चला। समझ तो रहा है जिनदत्त सेठ उस चोर को देख करके वो सहसा पूछ बैठा कि आप यहाँ कैसे आ गए। वह अंजन चोर जाकर के सीधा सर्वप्रथम उत्तर न देते हुए जाकर के चरण छू लेता है और जिनदत्त सेठ को जय जिनेंद्र बोल देता है। सब आपकी महिमा है, आपकी कृपा है, आपके वजह से तो हम यहाँ आ गए। तो जिनदत्त सेठ को और आश्चर्य लगने लगा, मेरे वजह से ये आ गया तो किस कौन सी महिमा मेरी ऐसी है कि ये यहाँ तक आ गया। तो उन्होंने कहा, आप जिस मंत्र का जाप करते हैं, जिस मंत्र का आप ध्यान करते हैं, जिस मंत्र का आप प्रतिनित्य उच्चारण करके अपने आप को धन्य बनाते हैं, वह मंत्र किसी दूसरे के जगह पहुंच गया था। हाँ हाँ, जानता हूँ मैं किसको दिया था, जिसको दिया था उनको वह विद्या सिद्ध करना था और विद्या सिद्ध करने के लिए स्मशान में पहुंच गया था, प्रयास कर रहा था, प्रयास बार बार विफल होने जा रहा था। यह सब दृश्य देख करके अंजन चोर आकर के खड़ा रहा वहाँ। कहाँ गया था? चोरी करने के लिए गया था और पीछे पकड़ने के लिए लोग पड़े थे, पकड़ने के लिए लोग आ रहे थे, और वह विचार करता है यदि मैं पकड़ा जाऊंगा तो मारा जाऊंगा, और यदि बचूंगा तो बचूंगा, लेकिन बचने का कोई उपाय नहीं। लेकिन ये जो दृश्य मैं सामने देख रहा हूँ, ये पहले पूछता हूँ कि ये व्यक्ति क्या कर रहा है। उस व्यक्ति से पूछा, ये क्या है, आप ऊपर चढ़ते हैं नीचे आते हैं, ऊपर चढ़ते हैं और नीचे आते हैं, ये वटवृक्ष के ऊपर चढ़ करके आप तुरंत नीचे उतर आते हैं, क्या हो रहा है ये सब? तो उसने बताया, मेरे लिए विद्या सिद्ध करना है और साहस कम पड़ रहा है, यदि मैं गिर जाऊं तो मेरा मृत्यु हो जाए, और विद्या सिद्ध ना हो तो मृत्यु तो निश्चित है, और विद्या सिद्ध हो जाए तो जीवन बच जाए और विद्या भी सिद्ध हो जाए, दोनों बातें हैं, लेकिन मुझे बड़ा विकल्प हो रहा है, मरने का भय है मुझे। इस प्रकार मरने के भय से वह बार बार जब नीचे उतरता था तो तुरंत अंजन चोर के मन में यह विचार आया, यह व्यक्ति डर रहा है और यह इसके पास जो नमोकार मंत्र है वो जिनदत्त सेठ के द्वारा दिया गया नमोकार मंत्र है, और वह नमोकार मंत्र यदि मेरे पास आ जाए और मैं सीख जाऊं और मैं विद्या सिद्ध करने के लिए तैयार हो जाऊं, क्योंकि मेरे लिए तो मरना ही है, पीछे पकड़ने आ रहे हैं तो उनके हाथ से मरना क्या, मैं स्वयं अपने हाथ से मरूंगा तो बहुत अच्छा रहेगा। इस मरण के साथ यदि नमोकार मंत्र जिनदत्त सेठ के द्वारा दिया गया है तो निश्चित रूप से उसमें कोई ना कोई अपूर्व शक्ति है, और उस अपूर्व शक्ति को मैं यदि पा लेता हूँ तो मैं धन्य हो जाऊंगा, और जिनदत्त सेठ जहाँ भी हो वहाँ पहुँच जाऊंगा और उनके चरण छू करके मैं उनका स्वागत करूंगा। आप जैसे महान आत्मा धर्मात्मा इस धरती पर कहीं भी नहीं, चोरों पर भी उपकार करने वाले आप हो। यही सोच करके तुरंत उसने उससे पूछा, ये क्या पढ़ते हो तुम? तो उन्होंने कहा, मैं नमोकार मंत्र पढ़ता हूं। किसके द्वारा दिया गया है आपके लिए? तो जिनदत्त सेठ के द्वारा। अरे हाँ, जिनदत्त सेठ बड़े विमानदार व्यक्ति, सेठ साहूकार बड़े विमानदार हैं, उनसे आपको मिला है। तो एक धर्मात्मा के द्वारा दिया गया मंत्र कभी व्यर्थ नहीं हो सकता। तुम डर रहे हो? इधर लाओ, कौन सा नमोकार मंत्र लिखा हुआ है क्या? नहीं लिखा नहीं, मुझे तो बताया है। बोलो क्या है वो? नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो वज्झायाणम, नमो लोए सव्वसाहूनम। ये पांच पद हैं, इन्हीं पांचों पदों को निरंतर पढ़ना पड़ता है और साहस के साथ मरण भय को छोड़ करके वटवृक्ष के ऊपर जो वो बंधे हुए क्या बोलते हैं उसको, सिंघाड़, हाँ उस पर बैठना है जा करके, और नमोकार मंत्र पढ़ते हुए उस सबको काटना है तलवार से। और नीचे भाली भरचे वगैरह गाड़े हुए हैं, अस्त्र शस्त्र बहुत सारे हैं, गिरेंगे तो मरण है। और गिरने से पहले अगर विद्या सिद्ध हो करके अपनी रक्षा करती है वह विद्या, तो हम बच जाएंगे, हमारे प्राण बचेंगे। इस प्रकार अपने प्राणों के भय को छोड़कर वह नमोकार मंत्र तो थोड़ा सा सुन लिया क्या होता है, तो उनको ऐसा लगा ये तो मैंने जीवन में कभी पढ़ा नहीं, उच्चारण नहीं किया, लेकिन जिनदत्त सेठ के द्वारा दिया गया यह मंत्र अन्यथा नहीं हो सकता, मेरी श्रद्धा उस पर है, मुझे पूरा विश्वास है कि यदि मैं सिद्ध करना चाहूँ तो निश्चित रूप से ये सिद्ध होगा और मुझे विश्वास है। ये कह करके नमोकार मंत्र ठीक से सीखा भी नहीं और पेड़ पर चढ़ करके जा करके उस पर बैठा और कहने लगा, मैं नमोकार मंत्र पर पूरी तरह से विश्वास रखता हूँ, उसका उच्चारण नहीं जानता, उसके पांचों पदों का मुझे ज्ञान भी नहीं है और मंत्र शक्ति अपूर्व होती है, इतनी श्रद्धा अवश्य मेरे लिए है। उसने कुछ नहीं कहा, आड़म ताड़म कुछ उच्चारण है उसमें, मैं आड़म ताड़म कछु न जानू, सेठ वचन परमाणु, ये कहा। आड़म ताड़म मैं कछु न जानू, सेठ वचन परमाणु, परमाणु बम जैसे मानते थे वो सेठ वचन को, अगर ये बम मेरे हाथ में आ गया मैं अपना हित कर ही लूंगा। सेठ वचन परमाणु कह करके उसने उस नमोकार मंत्र का उच्चारण तक नहीं किया, और सेठ वचन ही प्रमाण है, परमाणु यानी प्रमाण, सेठ वचन ये प्रमाण अन्यथा नहीं हो सकते। सेठ नमोकार मंत्र की शक्ति को जानता है और उनके लिए विद्या सिद्ध इसके माध्यम से हुई है, और प्रतिनित्य वह सुमेरु पर्वत के ऊपर जा करके दर्शन पूजन करता है उन अकृत्रिम चैतालयों का, तो मेरे लिए भी वह संभव है। ये कहकर उसने आड़म ताड़म कछु न जानू, सेठ वचन परमाणु कह करके तुरंत मरण भय को छोड़ करके, क्योंकि पीछे तो मरना ही था, वैसा क्या मरना, ऐसा मरूं यही अच्छा है, धर्म करेंगे तो मरेंगे, ना करेंगे तो मरेंगे, अतः अच्छा तो यही है, धर्म करके मरे और संसार सागर से तरे। इतना विश्वास जगा दिया और उसने वहां पर बैठ करके सारे उन शाखाओं को तोड़ दिया। तोड़ते ही नीचे आने लगा, विद्या आकर के उनको रोक लेती है, चरणों में झुक करके निवेदन करती है, विद्या आप कहाँ जाना चाहते हैं, आज्ञा फरमाएं। तो वह कहता है, मैं कहीं अन्यत्र, मेरे मन से तो कहीं नहीं जाना चाहूँगा, मुझे अन्यत्र कहीं भी जाने की इच्छा भी नहीं है, लेकिन एक इच्छा है, तुम जिसके वजह से सिद्ध हुई हो विद्या, मैं उनको देखना चाहता हूँ, अर्थात मैं मेरे सेठ को देखना चाहता हूँ। देखिए आप, मैं अपने सेठ को देखना चाहता हूँ, उनसे मिलना चाहता हूँ, उनका दर्शन करना चाहता हूँ, क्योंकि उनके वचनों पर श्रद्धा करके मैं नमोकार मंत्र का श्रद्धान कर चुका हूँ। और यह परंपरा की श्रद्धा, परंपरा की श्रद्धा भी इतनी शक्ति रखती है, तो साक्षात नमोकार मंत्र को उच्चारण करने वाला यदि श्रद्धा अपने भीतर जगाता है और विशुद्धि बढ़ाता है तो संकट से क्यों नहीं बच सकता। यहाँ पर एक बालक प्यास बुझा सकता है नाटक के भीतर, ये चमत्कार नाटक करते करते भी इतना पानी मिल सकता है, तो साक्षात हम श्रद्धा से कोई काम करेंगे, नमोकार मंत्र का उच्चारण करेंगे, तो क्यों उसकी महिमा अपने जीवन में प्रकट नहीं हो सकती। अवश्य हो सकती है, आप प्रयोग करके देखें। संकट के काल में यदि हृदय में श्रद्धा धारण करके नमोकार मंत्र का यदि आप उच्चारण करेंगे और स्मरण करेंगे तो बिना इच्छा के ही आपकी कामना पूर्ण हो जाती है। यही शक्ति है नमोकार मंत्र में। उसी को नाटक के द्वारा थोड़ा बहुत दिखाया गया था। मैं सुमेरु पर्वत का विषय बता रहा था। सुमेरु पर्वत के ऊपर 16 अकृत्रिम चैतालय हैं। इंद्रदेव अपनी विक्रिया के माध्यम से एक साथ कहीं भी जा सकता है। सुमेरु पर्वत के 16 अकृत्रिम चैतालयों में दर्शन पूजन करने के लिए पहुंच सकता है, तो 170 कर्म भूमियों में जो 170 तीर्थंकरों के समोशरण लगे रहते हैं, उन समोशरण में भी वो दर्शन करने के लिए आ सकता है, कल्याणक मनाने के लिए आ सकता है, एक साथ उपदेश सुनने के लिए आ सकता है। इंद्र के पास बहुत बड़ी शक्ति होती है, परंतु वह इंद्र अपनी शक्ति के द्वारा, विक्रिया शक्ति के द्वारा अनेकों स्थानों पर जा करके भी वहाँ के आनंद को लुटा करके भी दर्शन करता है, पूजन करता है, लेकिन क्या नहीं कर सकता वह इंद्र? एक नहीं कर सकता क्या? भगवान का अभिषेक नहीं कर सकता? सुमेरु पर्वत का नहीं बता रहा हूँ, साक्षात समोशरण में विद्यमान अरहंत परमात्मा, सकल परमात्मा, तीर्थंकर का वह अभिषेक नहीं कर सकता। महाराज ऐसा क्यों? साक्षात तीर्थंकर का अभिषेक हो सकता है क्या? नहीं। आभा मंडल के भीतर, प्रभा मंडल के भीतर कोई भी शक्ति प्रवेश नहीं करती। देवता गण भी अगर पुष्प वृष्टि कर दें तो मस्तक पर वे पुष्प गिरते नहीं, सब आजू बाजू में गिर जाते हैं। पुष्प वृष्टि इस प्रकार से होती है, लेकिन आजू बाजू में गिर जाते हैं, मस्तक का स्पर्श नहीं करते। और ऐसे अरहंत परमात्मा का कोई भी इंद्र क्या, कोई श्रावक भी अभिषेक नहीं कर सकता। अभिषेक ही नहीं, स्पर्श भी नहीं कर सकता। स्पर्श और अभिषेक, इन दो चीजों को छोड़ करके दर्शन और पूजन में केवल संतोष धारण करना पड़ता है, संतोष धारण करता है इंद्र भी। और वहाँ पर जितने भी सभाओं में उपदेश सुनने के लिए, पूजन करने के लिए, दर्शन करने के लिए आते हैं भव्यात्मा, वे कोई भी स्पर्श नहीं कर सकते साक्षात भगवान का। तब वह इंद्र पूजन दर्शन के माध्यम से इतनी विशुद्धि बढ़ा लेता है, इतनी विशुद्धि बढ़ा लेता है, उस विशुद्धि में हाथ आगे करता है, लेकिन विक्रिया के द्वारा बढ़ाए गए हाथ भी भगवान के चरणों तक जा नहीं पाते, स्पर्श नहीं हो सकता। और वे असंतुष्ट होकर के विचार करने लगता है, हे भगवान, मैं कैसा क्या करूं? अब साक्षात आप बैठे हैं सामने और आपका स्पर्श और अभिषेक मैं नहीं कर सक रहा हूं, तो क्या करूं? तब उनके लिए नंदीश्वर द्वीप के 52 अकृत्रिम चैतालयों में रहने वाले वो 52 मूर्तियां याद आने लगती है जो रत्न की प्रतिमाएं हैं। वे सुमेरु पर्वत के सारे सारे अकृत्रिम चैतालय की प्रतिमाएं याद आती हैं। क्यों याद आती हैं? प्रतिमा का दर्शन पूजन होने के साथ साथ और क्या हो सकता है? हाँ, स्पर्श भी हो सकता है और अभिषेक भी हो सकता है। प्रतिमा का अभिषेक और स्पर्श दोनों संभव है, पूजन भी संभव है, दर्शन भी संभव है और परिपूर्ण रूप से तृप्ति पाता है वह सौधर्मेंद्र भी देवगण के साथ वहाँ पर नंदीश्वर द्वीप में 24 घंटा पूजन का आनंद लुटाता है। दर्शन करते करते विशुद्धि बढ़ाता है, वहाँ पर अभिषेक करने के लिए अवसर प्राप्त होता है, स्पर्श करने का अवसर प्राप्त होता है और वो धन्य मानता है स्पर्श करके और अभिषेक करके। लेकिन हम पंचम काल में कैसे मनुष्य जन्मे, एक मंदिर बनाते हैं, मूर्ति प्रतिष्ठा करते हैं, तो उस मूर्ति की पूजा के लिए हमें एक पंडित की और पुजारी की जरूरत हो जाती है। कितना दुर्भाग्य का विषय है ये। हम मंदिर बनाते हैं, मूर्ति बिठाते हैं, भगवान आ जाते हैं, पंच कल्याणक करना और मंदिर बनाने का काम पूर्ण हो गया तो हम सोचते हैं बहुत अच्छा काम किया, हमारे जीवन में जो करना था वो कार्य पूरा किया। लेकिन ये मंदिर और मूर्ति क्यों हम बनाते हैं, इसका विचार चिंतन हम नहीं करते। करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? मंदिर हम अपने लिए बनाते हैं कि पुजारी के लिए बनाते हैं? और किसी मंदिर में मंदिर बना करके उसमें पूजन के लिए और अभिषेक के लिए पुजारी को रखोगे तो वह नौकर हो गया। नौकरों के माध्यम से भगवान की पूजा कराने से क्या धर्म होगा, श्रावक धर्म निभेगा? नहीं, गलत है। भगवान अपने लिए है, अपने आत्म कल्याण के लिए है। हम दर्शन करेंगे तो हमारी कर्मों की निर्जरा होगी, हम दर्शन करेंगे तो हमारी विशुद्धि बढ़ेगी, हम दर्शन करेंगे तो हमारे लिए पुण्य लगने वाला है। हम अपने लिए भगवान को लाते हैं और अपने लिए मंदिर बनाते हैं, इन मंदिरों में पुजारियों को पूजा के लिए रखना तो ठीक नहीं है। हाँ, ये बात अलग है, मंदिर के अन्य व्यवस्था के लिए किसी व्यक्ति को आप रखते हैं तो ठीक है, लेकिन पुजारी को रख करके पुजारी के माध्यम से पूजा करवाना एक तरह से भगवान को नौकरों पर रखने जैसा हो जाएगा। एक मुनि महाराज हैं, आपके घर में आहार के लिए आते हैं, आप स्वयं पड़गाते हैं या नौकर चाकरों को ला करके खड़े करते हैं पड़गाहन के लिए, आहार देने के लिए, आहार बनाने के लिए? क्या करते आप, स्वयं खड़े होते हो ना? जब एक सामान्य मुनि महाराज जिनको अभी तीर्थंकर प्रकृति का बंध भी नहीं, अरहंत भी नहीं बने, उस अरहंत पद पर नहीं गए, सामान्य मुनि को आप नवदा भक्तिपूर्वक स्वयं पड़गा करके धन्य मानते हैं, मुनि महाराज के चरण घर में पड़ गए, घर मंगल हो गया, ये धन्य मानते हुए आप धर्म का दान धर्म का निर्वाह करते हैं, तो मंदिरों में क्या पुजारी के माध्यम से निर्वाह करे पूजा अनुष्ठानों का, क्रियाओं का? नहीं, कदापि नहीं, ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, कदापि नहीं। इंद्र वह सौभाग्यशाली हो जाता है, साक्षात तीर्थंकर के पास जाकर के भी दर्शन पूजन करके वो संतुष्ट नहीं हो पाता। जो संतुष्टि जिनेन्द्र भगवान की अकृत्रिम चैतालयों में जाकर के पूजन करके संतुष्टि पाता है, तो हमारे देवालय में रहने वाले ये जो जिनबिंब हैं, पंच कल्याणक जिनके हुए हैं, ये जिनबिंब पवित्र जिनबिंब हैं, अकृत्रिम चैतालयों में रहने वाले बिंबों से कम नहीं हैं। और इन्हीं जिनबिंबों का दर्शन करने से आगम में आचार्यों ने ये लिख दिया है, जिनबिंब दंशने न परम सम्मत उत्पत्ति कारणम कदम घिपदी मिच्छत्तादि कम कलावस क्षय दंशनादु। जिनबिंब दंशने न, जिनेन्द्र भगवान के दर्शन से मिथ्यात्व आदि जो निदत्ति निकाचित रूप कर्म रहते हैं उनका भी क्षय देखा जाता है। इसलिए जिनेन्द्र भगवान का दर्शन पूजन, दर्शन भी, पूजन तो छोड़ दो, दर्शन मात्र से भी निदत्ति निकाचित कर्म का क्षय होकर के जीव सम्यक्त्व को प्राप्त कर लेता है, भव्यात्मा को सम्यक दर्शन का लाभ होता है। ये क्या कम महिमा है? हम जिन कर्मों को नाश नहीं कर पाते, तीर्थ यात्रा करके, दान दे करके, बड़े बड़े कर्मों को जिनको नाश नहीं कर पाते वो केवल एक सामान्य दर्शन की क्रिया से मिथ्यात्वादी कर्मों का विनाश हो सकता है, तो जिनेंद्र भगवान का दर्शन कितना महत्वपूर्ण है आपको सोचने के योग्य है। क्या आप इस बात के लिए राजी हैं कि हम मंदिर बना रहे हैं, भगवान को बिठा रहे हैं, तो हम नित्य अपने हाथों से भगवान का पूजन करेंगे, अभिषेक करेंगे और नित्य ही अपने ही तरफ से इन धर्म की क्रियाओं को करके हम अपने जीवन को सफल बनाएंगे? इतना संकल्प क्या आप कर सकेंगे? छोटा सा संकल्प है। और श्रावक धर्म में बड़ा धर्म कठिन धर्म है भी क्या? यही सबसे बड़ा सरल धर्म है। दर्शन पूजन को छोड़ करके इससे सरल धर्म क्या हो सकता है? सबसे अच्छा, सबसे सस्ता, सस्ता धर्म सस्ती क्रिया। और देखते देखते इंद्र की तरह आप भी एक महान बन जाएंगे, आपके लिए परिपूर्ण संतुष्टि मिलेगी। आप भी जब विदेह क्षेत्र के तीर्थंकर आदि का दर्शन करेंगे, वहां जाने के पश्चात आपको वही असंतुष्टि मिलेगी। अरे हम तो पुना में चिंचवाड़ में नित्य पूजन करते थे, दर्शन करते थे, अभिषेक भी करता था और भगवान को स्पर्श करने का सौभाग्य मुझे मिलता था और मैं साक्षात समो शरण में आया तो यहाँ पर भगवान का स्पर्श नहीं कर पा रहा हूँ। ये असंतुष्टि की अनुभूति आप भी करेंगे। इंद्र देवता तो करता ही है, आप भी करेंगे। इसीलिए वह और विक्रियाओं को बना करके इंद्र देवता कहीं नंदीश्वर द्वीपों में अपनी विक्रियाओं को भेज देता है और उधर संतुष्टि पा लेता है। जो संतुष्टि यहाँ नहीं मिलती वहाँ वह नंदीश्वर द्वीपों में संतुष्टि पा लेता है। बताइए कितनी महिमा है जिनेंद्र भगवान के बिंब में। ये प्रतिमाएं हमारे भव के कर्मों को धोने के लिए निमित्त हैं, हमारे जीवन के भविष्य के सारे संकटों को दूर करने के लिए निमित्तभूत होती हैं। ऐसे मंदिरों को और मूर्तियों को बिठाने का अर्थ होता है अपने जीवन को निर्माण करना, निर्वाह नहीं निर्माण करना। जीवन निर्वाह और निर्माण ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। जीवन को हमें निर्वाह करना है कि निर्माण करना है? निर्माण करना है। तो जीवन का निर्माण यदि करना है समय हो गया है। निर्माण यदि करना है तो जीवन का निर्माण होगा देव पूजा, गुरुपास्ति, स्वाध्याय, संयम, तप और दान। ये छह अनुष्ठान श्रावक के सरल अनुष्ठान हैं। ये सरल अनुष्ठान ही श्रावक धर्म कहलाता है। इसमें हमें कम नहीं पढ़ना चाहिए, कम से कम नित्य देव दर्शन करेंगे। अगर जा करके मंदिर में दर्शन नहीं कर पाते हैं तो भाव वंदना तो कहीं भी रहे हम वहाँ करेंगे। यात्रा में रहे, कहीं जा रहे हों और वहाँ पर मंदिर नहीं मिला, मूर्ति नहीं मिली और दर्शन नहीं हो पाया, तो आप जिस मंदिर का नित्य दर्शन करते हैं उसको मन में ला करके वंदना करेंगे तो वह भी देव दर्शन का ही फल देता है। वह कार्य भी उतना ही श्रेष्ठ कार्य है जितना श्रेष्ठ आप नित्य वहाँ पर जा करके करते थे। भावों से पहुंचो मंदिर में। यदि रेलगाड़ी में भी हो और या ऊपर आकाश मार्ग से विमान में बैठ करके कहीं जा रहे हो, आप कहीं भी रहे भावों के माध्यम से मंदिर में पहुंचो और आराधना करो तीर्थंकर भगवान की, दर्शन करो, विशुद्धि के साथ दर्शन करो। यह विशुद्धि कर्म निर्जरा के लिए कारण बनेगा और वही फल मिलेगा जो आप मंदिर में जाकर के साक्षात दर्शन करते थे, वही फल परिपूर्ण रूप से इसमें भी मिलता है। इसलिए नित्य देव दर्शन का नियम लेने में, व्रत लेने में, संकल्प लेने में और उस संकल्प का निर्वाह करने में आपको कहीं से कहीं तक दोष आने वाला नहीं है। जब आप भाव वंदना कर सकते हैं तो कौन सा दोष आ रहा है? जरूरी थोड़ी है कि हम मूर्ति के पास जाकर के दर्शन करें। परिस्थितियों में हम नहीं कर पाते हैं तो भाव वंदना तो करना ही चाहिए। और ये भी कहीं शास्त्रों में लिखा हुआ नहीं मिलता कि श्रावक को प्रत्यक्ष मूर्ति के सामने ही दर्शन करना चाहिए, मूर्ति हो तो ही करना चाहिए। तो उस संदर्भ में अपने को क्या विचार आएगा? नित्य ऐसा हमने अगर नियम लिया है तो जहाँ कहीं भी जा रहे हों तो एक मूर्ति रखनी पड़ेगी साथ में। और ऐसा भी करते थे कोई कोई, विदेह क्षेत्र आदि के लिए गमन करते हैं तो समुद्र मार्ग से व्यापारी लोग, सेठ साहूकार लोग दूसरे देश के लिए व्यापार करने जाते थे, तो एक मूर्ति जिनेंद्र भगवान की, क्योंकि इतने महीनों तक जाना पड़ता है और देव दर्शन नहीं होगा, तो एक मूर्ति रख लेते। और आप 6-6 महीने तक कहीं जाते नहीं, 1-2 दिन के लिए, 3 दिन के लिए जाते हैं तो 3 दिन दर्शन नहीं होते। आपको कोई मूर्ति रखने की जरूरत नहीं, भाव वंदना कर सकते हैं। भाव वंदना करने पर भी वही फल मिलता है जो साक्षात करने पर मिलता है। वो 6-6 महीने तक जाते थे इसलिए रखते थे, और कोई कोई रखते भी नहीं थे, लेकिन क्या दर्शन से वंचित रहते थे? नहीं, परोक्ष रूप से भगवान का नित्य याद करते थे, नित्य पूजन करते थे, पूजन पाठ पढ़ते थे, अभिषेक भावाभिषेक करते थे। भाव वंदना, भावाभिषेक, भाव पूजा भी ये कम नहीं होता है। तो आइए, स्वागत है। पहला कार षट कर्मों में देव पूजा, फिर गुरुपास्ति। देव पूजा के संबंध में हम संकल्प लें कि नित्य हम देव दर्शन करेंगे जिनेंद्र भगवान का, इतना नियम लेंगे। भाव वंदना करो ना, क्या बिगड़ता है, क्यों डर रहे हैं? अगर साक्षात मंदिर है तो प्रमाद नहीं करना, अपने आस पास में कहीं भी मंदिर होता है तो अवश्य जाना, प्रमाद नहीं करना। जिस दिन आप मंदिर नहीं जाते उस दिन बहुत बड़ा नुकसान हुआ ये समझ लेना। जैसे आप सर्विस में हैं और किसी दिन 4 दिन नहीं जा पाए किसी कारणवश, तो आप समझते हैं कि जीवन में बहुत बड़ा नुकसान हो गया, 4 दिन का अब ये पेमेंट कट होगा क्या, मिलेगा, आप कितना चिंतित हो जाते हैं। उसी प्रकार यहाँ पर यदि नियम लोगे, चिंता करने की जरूरत नहीं। आप मंदिर तक नहीं भी पहुँचोगे, प्रमादवश नहीं कह रहा हूँ, किसी परिस्थिति में आप मंदिर नहीं भी पहुँचोगे तो भी उसका बराबर पेमेंट मिल रहा है, पगार मिल रहा है। तो ऐसा नियम लेना है, लेंगे ना? हाँ
लेंगे महाराज जी।
कितने लोग लेंगे, हाथ उठाओ। नित्य देव दर्शन करेंगे, वीतरागी भगवान के वीतराग मुद्रा का दर्शन करेंगे और ये भावना बहाएंगे हम, बहुत अच्छी बात है, सबको आशीर्वाद है। आज का प्रवचन देना मेरा सफल हो गया।
नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु।
मैं यही चाहता था, देव पूजा गुरुपास्ति आदि षट कर्म श्रावक के नित्य करने के हैं, और पहली क्रिया ही पुजारी के माध्यम से होता है और स्वयं के माध्यम से ना हो तो कितना बड़ा अन्याय हो जाएगा। भगवान सोच रहे होंगे अब पता नहीं कौन पूजन करने आएगा, पुजारी आएगा कि यही भक्त लोग आएंगे। भगवान संकट में तो ऐसा नहीं होना, ठीक है ना? दोनों रास्ता बता दिया, सस्ता से सस्ता रास्ता बता दिया। जब हम मंदिर के पास रहेंगे, आप आस पास में मंदिर है और हम स्वस्थ हैं, उस परिस्थिति में साक्षात देव दर्शन कर लेना, पूजन कर लेना, अभिषेक कर लेना, इंद्र के समान भाग्यशाली बन जाना। ऐसा अवसर जो जिनबिंब दर्शन करते समय हमारे लिए लाभ होता है, साक्षात समोह शरण में भी वह लाभ नहीं होता। वहाँ पर असंतुष्टि रहती है, छूने का अवसर नहीं मिलता। जब हम जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा को साक्षात अरहंत हैं ऐसा समझकर छूते हैं तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं विशुद्धि के काल में। और इस समय हमारे लिए जो कर्म की निर्जरा होती है वो अकथनीय है, असंख्यात गुणित कर्मों की निर्जरा श्रावक भी करता है, ऐसा जिनेंद्र भी भगवान कहते हैं। और उसी वक्त जब जिनेंद्र भगवान का दर्शन करता है विशुद्धि के साथ, तो उसके निदत्य और निकाचित कर्म जैसे कठोर कर्म भी, जो दुख देने वाले कर्म होते हैं, पीड़ा देने वाले कर्म होते हैं, वे कर्म भी खिसक जाते हैं, कर्म निर्जरा हो जाती है और वह सुखी हो जाता है, परमार्थ से भी सुखी होता है। सम्यक्त्व की उत्पत्ति के पश्चात वह परमार्थ सुख की अनुभूति करने लगता है, आत्मा आत्म सुख की अनुभूति करने लगता है। जब वह लौटता है घर तो इतने शांति का वातावरण छाया हुआ वह अनुभव करता है, 24 घंटे तक मन में शांति ही शांति रहती है, क्योंकि सुबह जो कठोर कर्म थे वो खिसक गए तो 24 घंटे तक अशुभ कर्मों का उदय नहीं होगा। और आप कहीं भी आ रहे हैं जा रहे हैं तो ऐसे कोई अशुभ घटना जैसे एक्सीडेंट आदि अशुभ घटना नहीं घटेगी और अशुभ कोई निमित्त आपके लिए नहीं मिलेगा, क्योंकि सुबह आपने दर्शन अभिषेक पूजन करके गंधोदक लिया है, अशुभ कर्म सारे के सारे निर्ज अपकर्षित हुए हैं, उनका स्थिति बंद अनुभाग बंद आदि हट गए हैं, तो दिन भर हमारे कर्म हमारे लिए फल कैसे दे सकते जो सुबह ही धो करके चले गए। तो ये काम अवश्य करना है, करेंगे ना। मन वचन काय से समर्पित होकर के जो आप स्वयं के लिए धर्म करोगे तो धर्म भी आपके जीवन में हर्षित होकर के आएगा। धर्मो रक्षति रक्षितः। धर्म की रक्षा हम करेंगे तो धर्म भी हमारी रक्षा करेगा। रक्षा करे हम उनकी रक्षा करते हैं। अहिंसा परमो धर्म
की जय। नियम सागर जी महाराज की जय। महाराज श्री आपका बहुत बहुत उपकार है हम लोग को। दो मिनट रुक जाए बस 2 मिनट का टाइम है। महाराज श्री बहुत बहुत उपकार है कि आपके आशीर्वाद से हम लोगों को, अभी तक ये बोलते थे कि छिंचवाड़ में मंदिर नहीं है, अब जब मंदिर पास में आ गया तो ये नियम भी आपने जो दिला दिया है, सभी लोग इसका भरपूर लाभ उठाएं। महाराज श्री हम लोगों के दुखों के बारे में इतना सोचते हैं, अपने को उतनी कृतज्ञता से अपने नियम का पालन करके उनके जो विश्वास है उसको अपने को अक्षुण रखना है, तो एक बार 3 बार नमोस्तु बोलेंगे और वो जो नियम लिया है अभी आज उसका अपन प्रतिज्ञापूर्वक पालन करेंगे। नमोस्तु महाराज जी।
आशीर्वाद सबके लिए, भरपूर आशीर्वाद। आपका जीवन सुखमय हो, आपके पाप कर्म सब निर्जरित हो करके आपको कोई भी जीवन में संकट ना आए, ऐसे जिनेंद्र भगवान का प्रसाद कृपा अनुकंपा आपके ऊपर रहे और ये आशीर्वाद फलीभूत हो, ऐसा आशीर्वाद हम देते हैं।
एक सूचना यह है कि अभी महाराज जी का जुलूस, महाराज जी के साथ में ही राजा सौदर्मेंद्र का अपना जुलूस जाएगा मंदिर के लिए, वेदी शुद्धि के लिए कलश यहाँ रखे हुए हैं। इसको कलश को जो भी महिलाएं ले जा सकती हैं वो अपने घर पे ले जा सकती हैं, इससे वेदी की शुद्धि होगी। और मिनिमम राशि इसकी जो भी रखी है 501 या 1101 जो भी अपने इच्छा हो वो डाल सकते हैं मंदिर में क्विकली। एक आज जो अक्षय तृतीया के लिए आरती है, आरती होनी उसकी 1 मिनट में बोली खत्म करनी है। 5001 रुपया 5001 रुपया 7001 रुपया 7001 रुपया 11001 रुपया